नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू व्याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। श्री मोदी ने थाईलैंड और लाओ के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। महादेव सत्यबाजी ऐप का संचालक सौरभ चंद्रकार दुबई में गिरफ्तार। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान पर हुए हमले में 20 श्रमिक मारे गए और 8 घायल हुए। और भारत के जीवन नेजू छाजियान विजय तथा विजय सुंदर प्रशांत आज शाम स्पेन में वालेंसिया ओपन टेनिस के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पोलैंड के पियोत्र मातुजियोस्की और करोल डेजेविक्की से खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अवसर पर दक्षिण चीन सागर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत के हित में होगी। प्रधानमंत्री आज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वेंशियन में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और लाओ के प्रधानमंत्री सोनेकसाई सीफानडोन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में भारत और लाओ के बीच रक्षा, सीमा शुल्क, मेकांग गंगा त्वरित प्रभाव परियोजना तथा प्रसार भारती और लाओ के राष्ट्रीय टेलीविजन के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। श्री मोदी ने सम्मेलन से अलग थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगटोन छिनावात्रा से भी भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही बिम्सटेक के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। श्री मोदी ने लाओ के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोलित से भी भेंट की और आपसी संबंधों को लेकर साझेदारी को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी दिशा के मामलों के सचिव जयदेव मजुमदार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री के 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों में प्रधानमंत्री का भाग लेना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। महादेव सत्ता ऐप के सरगना सौरभ चंद्रकार को आज दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। चंद्रकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि उसे इस सप्ताह में भारत वापस लाया जा सकता है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत अनुदान के रूप में 3,21,000 परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है। पटना में कल मुख्यमंत्री सचिवालय में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए अनुदान की दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी। पहली किस्त में 4,38,000 से अधिक परिवारों को लगभग 307 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्य सरकार बाढ़ राहत के नए प्रावधान के तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए दिए हैं। पहले 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के लिए 490 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य जांच समिति बनाने पर कटाक्ष किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने और हरियाणा में हार के लिए दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास है। भारतीय सेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए T-90 विश्व टैंक का नया संस्करण तैयार किया है। वर्ष 2003 में से मुख्य युद्धक टैंक T-90 विश्व में अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। टैंक का नया संस्करण और अधिक शक्तिशाली तथा घातक बनाया गया है। तटरक्षक बल के लापता पायलट कमांडेंट राकेश कुमार राणा का शव कल गुजरात के पोरबंदर से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बरामद किया गया। पायलट राणा और उनके 3 सहयोगियों के साथ बल का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 2 सितंबर की रात को उस समय समुद्र में गिर गया था जब वो एक मालवाहक जहाज के चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उड़ान भर रहा था। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत नाजुक है। उन्हें अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया है। इस बीच डॉक्टरों के संयुक्त मोर्चे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर डॉक्टरों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। देशभर में दुर्गा पूजा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी और मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी तथा सिद्धि दात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न हिस्सों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है और मां दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी को मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिले। वहीं बिहार में भी यह त्यौहार भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवरात्रि का उत्सव पूरे जोरों पर है। लोग आस्था और भक्ति की भावना में सरोवर है। उड़ीसा में भी दुर्गा पूजा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उधर तमिलनाडु में आज आयुध पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग अपने घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में उपकरणों की साफ सफाई, सजावट तथा उनकी पूजा करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में लड़कियों की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश के ग्रामीणों के सशक्तिकरण के प्रति नानाजी देशमुख के समर्पण और सेवा को याद किया और उनकी सराहना भी की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देश और समाज के लिए उनके योगदान की सराहना की। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के डुक्की इलाके में आज एक कोयला खदान पर हुए हमले में कम से कम 20 श्रमिक मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। डुक्की के जिला अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने हथगोले और रॉकेट लॉन्चर दागे। पुलिस, अर्धसैनिक बल और बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका में आम चुनावों के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या कोलंबो से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच कई पूर्व राष्ट्रपतियों, मंत्रियों और वरिष्ठ राजनेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मतदान 14 नवंबर को होगा। स्पेन में वालेंसिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज शाम पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के जीवन नेदुनचाझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी का मुकाबला पोलैंड के प्योत्र मातुजियोस्की और कैरोल द्रेजे विक्की से होगा। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की तन्वी शर्मा, अलीशा नायक और प्रणय शेट्टीगर आज चीन के नानचोंग में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में खेलेंगे। तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन के जू वेंजिंग से होगा। अलीशा का सामना एक अन्य चीनी खिलाड़ी दाइकिन यी से होगा और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष सिंगल्स में प्रणय का मुकाबला चीन के वांग जी जुन से होगा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।